सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। भारत और इसराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। आज ये रिश्ता केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है। कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इसराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की। साथ ही दोनों देशों के पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोनों देशों ने दोहराया। इससे पहले फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था। इस विशेष रणनीतिक साझेदारी के व्यापक आयामों को समझने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी। वाधवा जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और इसराइल के बीच पहले से ही रणनीतिक साझेदारी थी, ऐसे में अब विशेष रणनीतिक साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बात हुई तो इसकी प्रगाढ़ता और इसको लेकर जो सीरियसनेस है दोनों नेताओं के बीच में, तो क्या इसमें नया जुड़ाव हो रहा है?
देखिए, पश्चिम एशिया एक व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले तक यह क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
जी।
लेकिन आज वैश्विक निवेश, डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी नवाचार और समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और भारत के लिए ये क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। अब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। वो इसलिए है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसराइल आज विश्व के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है। तो आपने खुद ही कहा, जैसे जल प्रबंधन है, कृषि है, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व भर में सम्मान पूर्वक दिखी जाती हैं। भारत एक विशाल बाजार है, हमारे पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और फिर विश्व में सबसे बड़ी डिजिटल आबादी वाला भारत देश है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं एक दूसरे के पूरक है और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का भी जिक्र किया, तो भारत इसराइली संबंधों को नई ऊंचाई देने में राजनीतिक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखें, जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल के दौरे पर गए थे, उस समय से आज तक दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे के समक्ष आत्मीयता दर्शाई है। निश्चित रूप से कूटनीतिक राष्ट्रों के बीच संचालित होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं होती, फिर भी जब भी हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं
जी,
तो उनके बीच स्थापित विश्वास ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान की है
जी। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत और इसराइल के संबंधों की चर्चा अक्सर हम डिफेंस की बात करते हैं, यानी रक्षा सहयोग के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये साझेदारी रक्षा से बढ़कर अब तकनीकी, कृषि है, स्वास्थ्य है, नवाचार तक पहुंच चुकी है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत इसराइल संबंध अब एक बहुक्षेत्रीय साझेदारी का रूप ले चुके हैं?
हम रक्षा सहयोग आज भी भारत इसराइल संबंधों का सबसे सशक्त आधार है, लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में और जो आर्थिक संबंध है वे भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। उसके साथ साथ नवाचार एक नया फील्ड है जिसमें इसराइल विश्वभर में स्टार्टअप नेशन के रूप से जाना जाता है और भारत भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मुल्क बन चुका है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, साइबर सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी है और उसके साथ साथ जो भी पश्चिम एशिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं भारत और इसराइल के बीच में सामने आई है। इसके अलावा जो जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता का भविष्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसराइल की अपनी प्राथमिकता है, और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी भारत और इसराइल के बीच में काफी सहयोग
जी
हुआ है। उसके साथ साथ दो और इस कनेक्टिविटी के ऊपर दो बड़े मुद्दे हैं भारत और इसराइल के बीच में। एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, और
जी
जिसको कि हम IMEC बोलते हैं, और एक I2U2 जिसमें भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो ये दोनों जो हैं, इसके चलते कनेक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी फील्ड्स उभर के सामने आई हैं भारत और इसराइल के बीच में, जैसे पोर्ट्स में एक नया आयाम खुला है, और पोर्ट में भारत ने हाइफा पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम पूरी इस नजरिए से देखें तो हम देखते हैं कि भारत का एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है,
जी
उसमें इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसकी भूमिका अहम रहेगी।
और नई विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्वांटम टेक्नीक्स की बात करें, और इस तरह की जितनी भी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, उन पर इस समय पूरे विश्व का विशेष जोर है, और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत और इसराइल की तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए आपको कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं?
जैसे कि आपने रिक्रूट किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको AI बोलते हैं, उसके अतिरिक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर, और फिर बायोटेक्नोलॉजी, और फिर उन्नत सामग्री विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग भविष्य की साझेदारी को मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें तो कोई भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि नवाचार है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, ज्ञान और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, जिसको हम उस नजर से अगर हम देखें तो ये सभी इतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी हैं, और भारत और इसराइल की साझेदारी इन्हीं आधारों पर विकसित हो रही है। एक ओर भारत के पास विशाल प्रतिभा है, और दूसरी ओर इसराइल के पास अनुसंधान है, नवाचार है और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट क्षमता है। तो यही परस्पर जो पूरकता हम देखते हैं दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
बिल्कुल, ये साझेदारी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। भारत और इसराइल दोनों वादवाजी आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है?
सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आपने जिक्र किया खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध की रोकथाम और महत्वपूर्ण अवसर संरचना की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला आ रहा है। भारत और इसराइल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो राडार प्रणालियां हैं, वायु रक्षा प्रणाली है, निगरानी के उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक्स हैं, समुद्री सुरक्षा उपकरण है, सीमा प्रबंधन प्रणालियां हैं, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और इसराइल मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सैन्य प्रौद्योगिकियां आगे आएंगी उनका संयुक्त विकास दोनों देश कर रहे हैं।
इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर हम देखें तो वादबाजी अत्यंत जटिल है और भारत के इसराइल के साथ गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अरब देशों और खाड़ी क्षेत्रों के देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किस तरह अपने सभी प्रमुख साझेदारों के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रख सकता है?
भारत और इसराइल के संबंधों का विकास वस्तुतः भारत की विदेश नीति के विकास की भी एक कहानी है। जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बन रहा है, वैसे वैसे उसने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया है, और यही कारण है कि आज भारत एक ओर इसराइल के साथ अत्यंत घनिष्ठ सामरिक संबंध बनाए हुए है, वहीं पर दूसरी ओर फिलिस्तीनी जनता की वैध आकांक्षाओं और दो राष्ट्र समाधान के ये अपने दीर्घकालीन समर्थन पर भी दृढ़ता से कायम है। तो यही संतुलित दृष्टिकोण आज भारत कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषताओं में एक माना जाता है। और यदि हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक बहुत गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और फिर नई प्रौद्योगिकी और आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार पश्चिम एशिया भी व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। और कुछ दशक पहले हमने देखा था कि ये क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था,
जी
लेकिन अब नए क्षेत्र खुल चुके हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भर कर उभर रहा है। तो भारत का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रवासी समुदाय भी है,
जी
निवेश भी है और संपर्क परियोजनाएं यूरोप तक पहुंच की नई संभावनाएं खुल गई हैं। तो
जी
इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है।
जी फरवरी 2026 में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश सहयोग को और मजबूत करने पर भी जोर दिया था। आपके विचार में आने वाले वर्षों में भारत इसराइल आर्थिक संबंधों के कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं?
हालांकि भारत इसराइल संबंधों रक्षा सहयोग बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। हीरे के व्यापार से आगे बढ़कर पहले बहुत हीरे का व्यापार हुआ करता था,
जी
उसके आगे बढ़कर आज रसायन और औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण, कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और उच्च तकनीक वाले अनेक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ रहा है। निवेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो 3.93 बिलियन डॉलर था 2025-26 में, और उसके साथ साथ 443 मिलियन इन्वेस्टमेंट थी भारत की, जिसमें सी अडानी की जो हाइफा पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है वो सबसे बड़ी है, और इसराइल की तरफ से भी 334 मिलियन डॉलर यहाँ पर इंडिया में निवेश हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और इसराइल ने 4 जुलाई 2026 को एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो है उसकी रेटिफिकेशन कर दी है और वो इफेक्ट में आ गया है। तो इसके चलते जो इन्वेस्टमेंट है दोनों तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन तरह की अग्रीमेंट है, उससे निवेश को और ज्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है कि जो न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो ई मोबिलिटी की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इसराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे। और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग का अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं।
जी और वादा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत इसराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में?
अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इसराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का और सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इसराइल भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, भारत को अगर इसराइली की नजर से देखें तो एक बड़ा लोकतंत्र है और एक बहुत प्रमुख अर्थव्यवस्था है, तो भविष्य में विशाल संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक और बिंदु मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है हमारी जो मोबिलिटी अग्रीमेंट, जिसके तहत अभी तो 20,000 इंडियन वहां पर काम करते हैं, लेकिन एक एडिशनल लेबर प्रोटोकॉल हमने साइन किया है जिसके तहत 50,000 भारतीय नागरिक इसराइल में काम करेंगे, और ये 5 साल का एक व्यापक प्रोग्राम है।
जी बिल्कुल वाधवा जी, आपने भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर बहुत महत्वपूर्ण और व्यापक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।